या युनास ए लोगो, अब देखें 5 दफा ईमान वालों को खिताब किया गया और अब तमाम इंसानियत को। क्यों? इसलिए क्योंकि अब ये हर एक के साथ हमारा क्या ताल्लुक होना चाहिए, हम गैर मुस्लिम मुल्कों में भी रहते हैं, गैर मुस्लिमों के साथ क्या ताल्लुक होना चाहिए, उनके साथ कैसे रहना है। तो या युनास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़कर व उनसा, ए लोगो हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। ये क्यों कहा गया? असल में एक माशरा था ऐसा जिसके अंदर बहुत ज्यादा ये ऊंच नीच देखी जाती थी, ये इस कबीले का तो ये इसका है, तो ये तो छोटे हैं और हम बड़े हैं और हम सरदार हैं और फलां नीचे है और फलां ऊंचा है। तो ये वो माशरा था जो आज भी ये जाहिलियत चल रही है। फतह मक्का के वक्त जब हजरत बिलाल को हुक्म दिया गया कि काबा की छत पे आप चढ़ के अजान दे, तो उस वक्त अताब बिन उसैद ने कहा कि शुक्र है अल्लाह का कि मेरा बाप जिंदा नहीं है कि वो ये दिन देखता कि ये मतलब कि ये ऐसा बंदा अजान दे रहा है, क्योंकि उनके नजदीक ये गुलाम थे और गुलाम की तो कोई इज्जत नहीं होती थी, और इस्लाम ने तो इनको इतनी इज्जत दे दी कि वो ही जगह जहां पे उनको घसीटा जाता था वहीं पे उनको काबे के ऊपर खड़े होकर अजान देने का शर्फ मिल गया। एक ने कहा मोहम्मद को ये काला कब्बा ही रह गया था अजान दिलाने के लिए। सुहेल बिन अमर ने कहा अल्लाह जिस चीज को बदलने का इरादा करे उसको बदल देता है। अबू सुफियान ने कहा मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि जो मैं बोलूंगा मुझे डर है कि आसमान का रब उसके बारे में उनको खबर दे देगा। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और वाकई आपसे सलाम को खबर दे दी, आपने इन सबको बुलाया और सबने इकरार किया कि हाँ हमने ये कहा है। इस पर यह आयत उतरी कि तुम सबको तो अल्लाह ताला ने एक ही मर्द और औरत से पैदा किया, यानी हम सब का शजरा नसब अगर बनाया जाए और पीछे लेके जाया जाए तो इन द एंड किस पे जाके खत्म होगा? आदम और हव्वा पे। तो हमारी ओरिजिन, हमारे माँ और बाप तो सबके सेम ही हैं, उसके बाद है कोई काफिर हो गया, कोई मोमिन हो गया, कोई नेक हुआ, कोई बद हुआ, कोई कुछ हुआ, लेकिन सब हैं तो एक ही ना, एक ही इंसान की औलाद है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना हज्जतुल विदा के खुतबे में कि ए लोगो तुम्हारा रब एक है, सुनो किसी अरबी की अजमी पर कोई फजीलत नहीं, ना अजमी की अरबी पर कोई फजीलत है, किसी गोरे को काले पे कोई फजीलत नहीं, काले को गोरे पे कोई फजीलत, फजीलत है तो सिर्फ तकवा की बुनियाद पे। तो यानी एक मर्द औरत से पैदा हुए और आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी आपसे सलम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने सारी जमीन से इकट्ठी की थी, इसीलिए किसी का रंग काला है, किसी का गोरा है, किसी का दरमियाना है, कोई नरम है, कोई सख्त है तबीयत में, जैसे मट्टी होती है तो कोई किस तरह का है, कोई किस तरह, क्योंकि मट्टी तरह जगह जगह से जमा की गई थी। लेकिन इसका मतलब नहीं, ये नहीं कि कोई किसी से ऊपर हो गया। और ये आयत रेसिज्म को खत्म कर देती है, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर देती है और इंसान को जमीन पे ले आती है, उसके तकब्बुर को भी खत्म कर देती है कि सब लोग आदम की औलाद हैं और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया बस। वजअलनाकुम शुउबा व कबाइल, और तुम्हें शउब और कबाइल बनाया। क्या फर्क है दोनों में? शउब होता है जो कौम होती है, मतलब है कि ये अरबी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये हैं, और कबाइल जो उसके अंदर फिर शाखें होती हैं। आप इसको ऐसे समझ लें जैसे एक तना है, तना आदम और हव्वा है, उसके बाद ब्रांचेस कहीं निकल रहे हैं, बड़ा सा दरख्त सोच लें, कई ब्रांचेस निकल रही हैं, कई शाखें निकल रही हैं, वो शाहूब है, और आगे जो टहनियाँ हैं वो कबाइल हो गए, यानी उन शाखों से भी आगे टहनियाँ भी निकल रही हैं, अब आगे निकलेंगे, आगे कई बरादरियां हैं, कई कई जुबानें बोलने वाले हैं, वो आगे एक ही कौम एक है, लेकिन आगे उनकी भी आगे शाखें निकल आती, तो इस तरह से है। लेकिन ये किस लिए बनाई गई? इसलिए नहीं कि कोई फखर करे हमारा कबीला सबसे ऊंचा, हमारी बरादरी सबसे बड़ी, हम तो दूसरों को नीचा देखते हैं, इनके अंदर तो हमने शादी ही नहीं करनी क्योंकि ये नीची जात है और हम ऊंची जात है। चलो कोई शादी नहीं इसलिए करता कि चलो हमारे एक जो तरीका रहन सहन का, मिसाल के तौर पे कोई कहे कि भाई हम देसी तरीके के लोग हैं, अरबी लोगों का तरीके अपने, उनके खाने अपने, उनकी जुबान अपनी होती तो हम मुश्किल हो जाएगा मतलब मेल मिलाप होना, वो एक अलग बात समझ आती। लेकिन इसलिए अगर किसी को नीचा देखना कि ये तो हमसे नीचे हैं, ये तो फलानी जात के हैं, ये तो कमीनी जात है, ये तो कमी जात है, ये फलां है, इस तरह की बातें जो हम करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया ये तो लितआरफू है, कि तुम्हारी पहचान हो, इसलिए नहीं है कि तुम इसके ऊपर फखर करने खड़े हो जाओ। आप ने फरमाया था ये जाहलियत के औसाफ हैं, जाहलियत के औसाफ, कि नसब पे ताना देना दूसरे को, कि तू तू तो फलां कौम से है, बल्कि बाकायदा कहते हैं ये तो मोची हैं, ये तो नाई हैं, ये तो लोहार हैं, ये तो ऐसे हैं। ये फरमाया ये जाहलियत के औसाफ हैं। और हसब पे फखर करना, अपनी बरादरी पे फखर, तो फरमाया जिसका अमल सुस्त हो उसका हसब नसब उसको नहीं बचा सकता। अमल तो कुछ है नहीं, हसब नसब पे फखर है। आप ने फरमाया अल्लाह ताला ने मेरी तरफ वही फरमाई है कि तुम लोग आजी इख्तियार करो, यहां तक कि कोई किसी पे फखर ना करे, ना ही कोई किसी पे ज्यादती करे। तो हम कि जो ये फखर करने लग जाते हैं ना, या कोई कहे हम गोरे हैं तो ये तो काले हैं, और कोई कहे हम तो फुलां जुबान बोलने वाले हैं और ये तो पता नहीं क्या चीज है, ये तो दूसरी जुबान बोलते हैं लिहाजा ये तो घटिया है, तो ये नहीं दुरुस्त है। इंसान को हसब नसब इसलिए दिया गया कि देखिए रिश्ते पता चलते, एक देखो एक ट्राइब का पता चलता है ये फलां के, अच्छा हम भी इस ट्राइब से हैं, तो इससे इंसान को सिला रहमी करने में आसानी होती है, दूसरे के साथ ताल्लुक को सिला रहमी के बहुत बहुत सवाब है, बहुत अजर है, और बहुत हकूक है एक दूसरे पे। सबसे पहले अपने रिश्तेदारों का हक आता है, तो अगर पता है कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरी बरादरी है, अब कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, पहचान कैसे होगी, अच्छा ये भी फलां उससे हैं, ये भी फलां कबीले से हैं, या ये भी फलां जगह के रहने वाले हैं, वो उससे फिर तारुफ हो जाता है, एक दूसरे के करीब आने में मौका मिलता है, और एक दूसरे से बात करना, कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है, एक दूसरे को तबलीग करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपके अपनी जगह के लोग हैं, आपको उनका कल्चर का पता होता है, आपको पता होता है इनके अंदर क्या चीज़ ज्यादा अहमियत रखती है, ये क्या खाते हैं, ये क्या पीते हैं, ये किस तरह रहते हैं, उनसे यानी उनसे आपका जहन जल्दी मिल जाता है। तो ये तो इसके लिए करा गया कि आपकी शनाख्त हो चुके, बिल्कुल जैसे मैं हमेशा करती हूँ, जैसे आपके नाम है, आपका नाम किस लिए रखा जाता है, ताकि आपका एक तारुफ होकर भाई अच्छा नाम लिया जाए, ये वो है तो पता चल जाए अच्छा फलां बंदी का वो इससे मुराद है, अगर किसी का नाम ही ना रखा जाता, सारे ही एक सब खवातीन और सब मर्द, तो कैसे पहचान होती, किसी की बात करनी होती तो कैसे पता चलता, तो जस्ट कोई आइडेंटिफिकेशन के लिए नाम होते। इसी तरह कबाइल है, इसी तरह आगे उनके उनकी शाखें हैं, शाऊब हैं और कबाइल हैं, ताकि तुम्हारा तारुफ हो सके, इसलिए नहीं कि तुम इस पे फखर कर सको और अपने आप को बेहतर समझ सको दूसरों से, तो ये बेहतरी के लिए नहीं है, ये किसी के आला नसब के लिए नहीं है। हाँ अगर कोई बेहतर है तुम में से तो वो कौन है, वो कौन है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाही अतकाकुम, फिर बात वही आ गई कि तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के नजदीक वो है जो तकवा इख्तियार करे, जो जितना मुत्तकी है उतना ही इज्जत वाला है, बाकी हम अपनी इज्जतें जितनी मर्जी बना के हमें बैठ रहे हैं। अक्सर तो यहाँ पे हसब नसब के ऊपर इतना फख्र किया जाता है कि उसी की बुनियाद पे हम सोच लेते हैं हम बहुत बड़ी चीज़ हैं, हालांकि हमने खुद तो नहीं अपने आप को उस कबीले में पैदा किया, उस जात या बरादरी में पैदा किया, तो फिर हमारा इसमें क्या कमाल है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि फौकियत हासिल है ही नहीं किसी को किसी पे, फौकियत सिर्फ तकवा की बुनियाद पे, जो मुत्तकी है बस वही सबसे ज्यादा बेहतर है अल्लाह के नजदीक। अब दुनिया में बेहतरी का मयार क्या है, पैसा, कि यहाँ पे जिसके पास पैसा है वो ज्यादा दूसरों से ज्यादा अमीर और दूसरों से ज्यादा इज्जत वाला और वो है, लेकिन अल्लाह ताला के नजदीक ही नहीं, इब्ने अब्बास ने यही फरमाया दुनिया के लोगों के नजदीक से इज्जत का मयार मालो दौलत है, अल्लाह के नजदीक इज्जत तकवा में है, मुत्तकी चाहे वो कितना ही गरीब क्यों ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम ये अब कहना छोड़ दें कि जातों बरादियों के ऊपर फख्र करना और दूसरे को हकीर नामों से पुकारना, किसी का प्रोफेशन था, किसी के बाप दादा का था, अब तो उनका है भी नहीं प्रोफेशन, लेकिन अभी तक वो ऐब लगाने वाली बात है ना, अभी तक कहना ये तो मोची नाई होते हैं, लोहार होते हैं, ये तो फलां होते हैं, तो ये कितनी बुरी बात है, इसमें भी अपनी बड़ाई ही होती है कि मैं कितनी बड़ी चीज हूं और ये तो हकीर है, उनको लुक डाउन करना, वाकई उनको नीचा देखते हैं तो ऐसी बात कहते हैं। और इसी तरह कई कौमों के ऊपर भी कहते हैं, ये तो फलां कौम है तो ये तो ऐसी है, ये फलां कौम है तो ऐसी है, और खुद अपने ऐब नहीं पता। लिहाजा तुम्हारे अंदर वो ही सबसे ज्यादा इज्जत वाला है। फजीलत का मयार सिर्फ एक है, ज्यादा नहीं है, कि कहा गया हो कि तकवा भी हो और जिसके अंदर पैसा भी हो और जिसके पास बड़ा कुर्सी भी हो। नहीं, तुम कितने बड़े वजीर आजम हो, सदर हो किसी जगह के, कितनी बड़ी बेगम साहिबा कहलाती हो, तुम अपने नाम के साथ बेगम साहिब बेशक लिखवा लो, मैडम लिखवा लो, उससे आप इज्जत वाले नहीं बन जाते अल्लाह के नजदीक। अपने नाम की तख्तियां लगवा लो कहीं, और ये कहो कि जी हम फलां बरादरी से हैं, हम फलां जगह के रहने वाले। आप देख लें हमारे यहाँ फखर कितना ज्यादा है। कोई कहता है हम जी पठान हैं, कोई कहता जी हम बलूची हैं, हम उसके ऊपर फखर करते हैं, कोई अपने पंजाबी होने पे, कोई अपने सिंधी होने पे, कोई बंगाली होने पे, कोई फलां, कोई अरबी कहते हैं हम अरबी बहुत बड़ी हमारी शान है, कोई किसी पे, कोई किसी पे। अगर चाहे कोई वो अरब हो, चाहे कोई हाशमी हो, चाहे वो कोई सैयद हो, चाहे वो कोई कुछ हो, लेकिन वो अगर मुत्तकी नहीं है तो अल्लाह के हाँ उसकी कोई इज्जत नहीं। उसके मुकाबले में अब असद बिलाल को देख लें, वो कोई कुरैशी तो ताल्लुक नहीं रखते थे, एक हबशी थे और एक गुलाम थे, उनका स्टेटस भी वो नहीं था, उनकी जात बरादरी क्या थी बताएं। आज होते तो शायद पता नहीं हम लोग क्या करते उनके साथ, ऐसे लोगों के साथ जो आज कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर तकवा था तो अल्लाह ताला ने उनको क्या बुलंद मकाम दिया। लेकिन हमारी सोच अभी तक वो जाहिलियत वाली है जो कि कुरैश मक्का में थी, वो ही सोच आज हमारी है, हमने नहीं वो जहालत वाली सोचें छोड़ी और ना ही इस्लाम वाली सोचें अपनाई। क्या वाकई फिर हम मुत्तकी लोग हैं? अब तकवा, ये जिसके अंदर तकवा होगा वो तो इन चीजों से बचेगा जो आयत नंबर 11 और 12 में आई। अल्लाह ताला ने फरमाया वत्तकुल्ला, एंड में ये सिर्फ फरमा दिया, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कही गई, बस अल्लाह से डरो, ये अल्लाह का डर ही है तुम्हें सीधा रखेगा। क्या वाकई अल्लाह का डर हमारे अंदर है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफ वल गिना, ये दुआ मांगनी चाहिए हम सबको, अल्लाह हिदायत भी तकवा भी दे, अफाफ वल गिना भी दे, पाकीजगी और बेनियाजी। अल्लाह रहम फरमाए कि तकवा वाले जो हैं वो इज्जत वाले हैं, हम ब्रांड नेम्स पहन के इज्जत नहीं पा सकते। इन अल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला भी है बाखबर भी है। ये क्यों कहा गया? इसलिए उसको पता है ना कि तुम अंदर से क्या हो और बाहर से क्या हो, दिखते क्या हो और सोचें तुम्हारी क्या है, अब तुम्हारे अंदर कितना तकब्बुर है, तुम लोगों को कितना हकीर जानते हो, उनकी बातें कितनी बनाते रहते हो, अपने आप को कितना नेक समझते हो, इल्म वाली समझते हो, तजस्सुस कितना करते हो, और कितना दूसरों का मजाक उड़ाते हो, उनको हकीर जानते हो कि क्या करते हो। हम ये सारी बातें सामने रख के ये सोचें कि मेरे तकवा का लेवल क्या है, मेरे तकवा का, अपना खुद सब चेक करें, किसी और को नहीं जरूरत के वो हमें बताए, हम खुद जानते हैं। देखिए मेरे लोगों के साथ रवैया क्या है, क्या मैं सिर्फ नमाज रोजा ही करती रहती हूँ और कुरान की क्लासें लेके और बस ये समझती हूँ कि बस मैंने सदका कर दिया और ये कर दी तो बस मैं बड़ी पाक साफ हो गई, बड़ी मुत्तकी हूँ, मैं दरसों में जाती हूँ, मैंने हिजाब भी शुरू कर दिया, लेकिन फिर उसके बाद जब मेरी मजलिसें होती हैं कैसी होती हैं, जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो हम दो लोग क्या बात कर रहे होते हैं, हम किस चीज को डिस्कस कर रहे होते हैं, हमारा पॉइंट क्या होता है डिस्कशन का। कहते हैं जिनके पास ब्रिलियंट आइडियाज होते हैं वो लोगों को डिस्कस नहीं करते। मैं जब अपने शौहर के साथ बात कर रही थी तो किसकी बात कर रही होती हूँ, मेरा टॉपिक क्या होता है, मैं फ्रेंड्स के अंदर बैठती हूँ तो तब मेरे टॉपिक्स क्या होते हैं, मेरा अखलाक क्या है, मैं मजाक तो नहीं उड़ाती, एक एक चीज को देखे लेट स्टार्ट, मैं मजाक तो नहीं उड़ाती लोगों का, मैं लोगों के अंदर ऐब तो नहीं तलाश करती रहती, मेरी नजरें कहाँ जाती हैं, मेरे ख्याल कहाँ होते हैं, मेरी सोच में क्या चीज रह जाती, मैं लोगों को बदनाम तो नहीं करती उनके नए नए नाम रख रख के लोगों को हंसाने के लिए या उनको हकीर करने के लिए, मैं जन कैसा मेरा है, गुमान कैसा है, फिर मैं तजस्सुस तो नहीं करती, ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं लोगों से करती जो उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, प्राइवेट जिंदगी के बारे में। अगर तजस्सुस करना जायज होता तो हमें ये कहा जाता कि भाई लोगों के घरों में दनदनाते हुए दाखिल हो जाओ। क्यों हमें कहा गया इजाजत लेके जाओ? क्यों हमें कहा गया कि तुम लोगों के घरों में ना झांको? तो तजस्सुस नहीं करना, मत प्राइवेट लाइफ लोगों की उसको तार तार करो, उसको ओपन ना करो। किसी का कोई ऐब भी है उसको ढका रहने दो, लेके ना चल पड़ो गंदगी को फैलाते हुए। गंद एक तरफ से उठाया सारी दुनिया में फैला दिया। फिर देखिए तजस्सुस के अंदर एक बात ये और भी आती है ना कि जब हम सोशल मीडिया पे अच्छा मैं उसका फेसबुक चेक करूं, कर क्या रही है आजकल, अच्छा किधर गई थी, अच्छा क्या किया था। वो तो उनकी तो बेवकूफियां हैं ही जो अपना सब कुछ लेके सामने सबके रख देते हैं। लेकिन हमारा भी तजस्सुस कम नहीं होता, हम भी तो जानना चाहते हैं ना इसकी। वो जहां मर्जी जाएं, जिस जहां जो जो मर्जी उन्होंने तस्वीरें डाली नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं एक एक तस्वीर बैठ के, क्या खाया क्या पिया किधर गए, है ना। हम कह रहे हैं तजस्सुस तो नहीं ना हम कर रहे, वो तो उन्होंने खुद ही बताया, खुद ही बताया। लेकिन हमने किस नीयत से ये सारा कुछ देखा कि हम जरा जाने तो सही, देखें तो सही आजकल क्या कर रही है, किधर जा रही है। हालांकि हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इंसान के इस्लाम का हुसन इसमें, आप सरसर हमने फरमाया उसके इस्लाम का हुसन इसमें कि वो लायानी बातों को छोड़ दे। मेरा जब कोई ताल्लुक ही नहीं तो क्या जरूरत है? अब अगर मैं ऊपर से तो बड़ी नेक बनी हुई है लेकिन मेरे अंदर ये सारी खराबियां, और मैं तौबा भी नहीं करती और मैं इसको कभी छोड़ना भी नहीं चाहती, तो फिर कैसे हम मुत्तकी हैं? वाकई फिर हमारे अंदर कोई तकवा है भी? इन अल्लाह आलिमुन खबीर, अल्लाह फिर जानने वाला है, किसी और को पता चले ना चले, क्योंकि इल्म भी है उसको, वो बाखबर भी है, अंदर की बातें भी जानता है और बाहर की भी बातें भी जानता है। औला तिल आराबु आमन्ना, और ये भी देखें ये कितनी बड़ी बात है। वो आराब आते थे, बद्दू आए आप सल्लम के पास और कहते हैं हम ईमान ले, कुल लम तुमीनु वलाकिन कुलू असलमना। ओहो कि तुम ईमान नहीं लाए, तुम सिर्फ इस्लाम लाए हो। कहीं हमारा भी हाल ये तो नहीं है कि हमें भी अस्तग़फिरुल्लाह क़यामत के दिन ये कहा जाए कि तुम ईमान तो नहीं लाए थे, सिर्फ इस्लाम ही लाए थे। इस्लाम क्या होता है? ज़ाहरी ज़ाहरी जो ऊपर ऊपर की चीज़ें कर लेना, ऊपर ऊपर के अरकान, जैसे मुनाफिकीन भी थे, नमाज भी पढ़ते थे लोगों को दिखाने के लिए और भी चीज़ें कर लेते थे, तो ऊपर ऊपर की तो हम सारी चीज़ें हिजाब भी कर ली है, नमाजें भी पढ़ ली, ये भी कर लिया, जो सारी देखने वाली चीज़ें अपेरेंट होती हैं। लेकिन अंदर क्या है, ईमान है कि नहीं? और तकवा आप सल्लम ने अपने दिल की तरफ इशारा करके फरमाया था, सीने की तरफ इशारा करके, अतकवा हा होना, अतकवा हा होना, तकवा यहां होता है, तकवा यहां होता है। हमने मुत्तकी लग के नहीं दिखाना लोगों को, तकवा दिल में होना चाहिए। दिल में नहीं है तो फिर मुत्तकी नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं आप इनसे कह दें कि देखो तुम लोग के अंदर तो गया ही नहीं ईमान, ये तो बाहर की बातें हैं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि ये उन आराब के मुतालिक नाजिर हुए जिन्होंने हिजरत नहीं की थी, और वो चाहते थे क्या कि वो उनको मुहाजरीन जैसा दर्जा दिया जाए, उनको मुहाजिर कहा जाए। तो अल्लाह ताला ने ये खबर दे दी, उनको लकब आराब है, उनको ये फरमा दिया कि नहीं ऐसा नहीं, वो मुहाजिरीन नहीं है, वो आराब ही है, तुमने तो वो काम नहीं किए। दूसरा एक कॉल ये भी कि इससे मुराद बनु असद थे, उनके आराब थे जो आए थे, वो उनके कबाइल आए और उन्होंने मदीना के रास्तों में गंदगी फैलाई और गल्ला के दाम बढ़ा दिए। ये कहत के साल मदीना आए थे और कहा आप हमारे अहलो अयाल के लिए सदकात में से दीजिए, क्योंकि हम दूसरे लोगों को मुसलमान करने के लिए तो आपको जंग करनी पड़ी, हम बगैर जंग के खुद ही आप पर ईमान ले आए, इसलिए हम माली इमदाद और सदकात के ज्यादा मुस्तहिक हैं। तो एक तरह से उन्होंने अपने इस्लाम का बड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एहसान जताया। और फरमाया आगे, वलम्मा यदखुल ईमानु फी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ अभी, तुम्हारे दिल में नहीं दाखिल हुआ, तुम अभी ऊपर ऊपर की बातें ही हैं, अभी तुम्हारे दिल में ईमान आया ही नहीं। से पता चला कि ईमान ना दिल में होता है, ईमान ऊपर ऊपर नहीं होता, जाहिरी कामों के अंदर इस्लाम होता है। तो इनके दिल अभी ऐसे नहीं हुए थे कि वाकई दिल नरम हो चुके हों, दिल अल्लाह की इताअत के अंदर हो, दिलों में अल्लाह का खौफ हो। तो इससे पता चला इस्लाम और ईमान अलग अलग चीजें हैं। हाँ, जब एक जगह पे सिर्फ ईमान बोला जाए तो उसमें इस्लाम भी दाखिल होता है, एक जगह पे सिर्फ इस्लाम बोला जाए तो ईमान भी दाखिल होता है, लेकिन जब अलग अलग बोले जा रहे हैं ना, तो इस्लाम अलग है और ईमान अलग है। इस्लाम तो जब आपने कलमा पढ़ लिया तो इस्लाम में दाखिल होगा, ठीक है, लेकिन ईमान खास चीज है। और ईमान वाला कौन होता है ये आगे आएगा, व इन तुतीउल्लाह व रसूलहू ला यलितकुम मिन अमालिकुम शैया, और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हो, तुम्हारे आमाल में कोई कमी नहीं की जाएगी, यानी तुम्हारे आमाल अल्लाह ताला जाया नहीं कर देगा। वाकई अगर तुम इताअत करने वाले हो ना, तो ऐसा नहीं है कि तुम जो नेकियां करते भी जा रहे हो तो क्या फायदा नेकी करने का, तो जाया ही हो जानी है, या तो इसका तो कोई बदला ही नहीं मिलना। नहीं, अल्लाह ताला इसको बढ़ा चढ़ा के तुम्हें देगा, कमी नहीं करेगा, तुम्हें तुम्हारा जितना हक बनता होगा उससे भी ज्यादा देगा तुम्हें। तो यहाँ पे बता दिया गया कि ईमान कैसे दाखिल होता है, इताअत से, अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत से। अगर तुम ईमान वाले नहीं हो अभी, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, पता नहीं है अभी हमारा ईमान का क्या हाल हो। इन्नल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है, अल्लाह ताला बड़ा करीम है कि वो देखें इन ये जो इतने मुश्किल अहकाम है उनके बाद भी, जिनमें पता है हमारे अंदर कमियां हैं कोताहियां, अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह तवाब रहीम, और यहाँ पे अल्लाह गफूर रहीम, तो हो गई है कोई कमी तो अल्लाह ताला माफ करने वाला, तुम तौबा कर लो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो तो वो माफ कर देगा। तो हर एक इंसान चेक करे कि मेरे अंदर ईमान दाखिल भी हुआ कि नहीं, और वो कैसे चेकिंग होगी कि मेरी इताहत कितनी है अल्लाह के हुक्मों की और रसूल की बात की। तो ईमान बोलने का नहीं नाम है, ईमान बातें बनाने का नहीं नाम है, हम बड़े ईमान वाले हैं, हम तो इस्लाम के लिए अल्लाह की खातिर जाने भी दे दें, हम तो ऐसे कर दें वो कर दें, ये तो उन्होंने भी आके बातें सुना दी कि हम तो देखें किस तरह के लोग हैं, आपको तो हमें बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कुछ जंग भी नहीं करने से, देखो हम खुद ही आ गए, हम ऐसे आ गए। तो बातें करने से ईमान वाला नहीं कोई हो जाता, बात तो बड़ी अच्छी है कि देखो कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी, हम खुद ही आ गए, लेकिन एक तो बोल बोल के जता रहे हैं, बड़ा एहसान जता रहे हैं जिसका आगे जिक्र आएगा, और दूसरे ये कि इससे ईमान का नहीं कोई ताल्लुक, हाँ इस्लाम ले आए हो तो। ईमान तो क्या है, ऐसा ऐसा दिल के अंदर बात का दाखिल हो जाना कि अमल ही बदल जाए, इताअत हो। हम कहते हैं अमल तो हमसे होता नहीं है, अमल तो बहुत मुश्किल है, तो फिर ईमान कैसे अंदर दाखिल होगा। इन्नमल मुमिनून अल्लदीना आमनू बिल्लाही व रसूली, देखिए यहाँ पे मोमिन कौन है, ईमान वाला फिर कौन होता है, वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर। कैसा ईमान, ईमान मैंने आपको बताया था तीन चीजों से होता है, दिल में भी ईमान हो, जुबान से भी अदा हो, और फिर इंसान अमल भी करके दिखाए। ये तीन बेसिक चीजें हैं ईमान के लिए, तीन शरायत हैं ईमान के लिए। अगर इस ईमान इसके बगैर मुकम्मल नहीं होता कि इंसान सिर्फ जुबान से दावे करता, तो मुनाफिकीन भी बहुत करते थे और जाहिरी जाहिरी तो बहुत अमल करते थे। इताअत, मुकम्मल इताअत अल्लाह और उसके रसूल की, सुम्मा लम यरताबू, फिर शक भी ना हो उसको, इतना यकीन हो कि ऐसी बातों में कोई शक नहीं है। देखिए शकूक शैतान डालता है, पता नहीं ये बात सही है कि नहीं, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, पता नहीं कयामत है भी कि नहीं, बहुत सारे शकूक डालता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में, अल्लाह ताला के बारे में, लेकिन इसको कोई शक ना हो। देखिए ये अब एक एक्स्ट्रा चीज आई है, पहले हम सिर्फ ईमान पढ़ते रहे, और ईमान जितना अल्लाह ताला पे ईमान लाना जरूरी है, उतना रसूल पे भी ईमान लाना जरूरी है, उनकी रिसालत पे ईमान लाना जरूरी है। और फिर तीसरी चीज, व जाहदु बी अम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, तब ईमान वाले बनोगे, जब अल्लाह पे ईमान लाओगे, रसूल पे ईमान लाओगे, कोई शक नहीं होगा इन दोनों ईमानों में। और तीसरी चीज जिहाद, यानी जद्दोजहद करना, एक तलवार उठाना, तो इसका बिल्कुल लास्ट स्टेज है। इससे पहले क्या है, पहले तो अपनी जात के साथ, अपने नफ्स के साथ जिहाद किया जाए ना, अपने अंदर जिहाद किया, स्ट्रगल की जाए अपने ऊपर, अल्लाह ताला के हुक्मों को कायम करने के लिए अपने आप से लड़ाई लड़नी पड़ती है। देखिए आपका दिल नहीं चाह रहा उठने का नमाज के लिए, तो अब आप क्या है, अपने आप से एक जंग होती है कि नहीं हो, कि बंदा कहता है नहीं मैंने उठना है, मैंने उठना है, अपने आप को खुद उठाना पड़ेगा। आप लोग कहते हैं इसका कोई वजीफा बता दे, वजीफा में क्या बताऊं, आप अपने आप को खुद करें ना सही, अपने आप से खुद फाइट करें, ये तो जिहाद है। अब कोई वजीफा बता देंगे हम नमाज के पाबंद हो जाएं, ये वजीफों से नहीं होता। तो ये जद्दोजहद है। फिर इसी तरह देखें ना, अब हमने ये जो आज आयात पढ़ी है, इसके लिए भी कितनी स्ट्रगल है ना अपने आप को इस पे लाने के लिए। दिल चाह रहा होगा आपको तजस्सुस करने का, दिल चाह रहा होगा किसी का मजाक उड़ाऊं, अब आदत ही पड़ गई है, दिल चाह रहा होगा गिबत करने का, दिल चाह रहा होगा इसके ऐब निकालूं चुनूं, बदगुमानी का भी, लेकिन जिहाद है ना, ये स्ट्रगल है अपने आप के साथ कि इंसान नहीं अपने आप को सही करे, नहीं मैंने इतात करनी है अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया, मैंने इतात करनी है उसके हुक्म की, ये जिहाद है। अपनी जात के साथ पहले जिहाद शुरू होता है, फिर अपने इर्द गिर्द वालों के साथ, फिर उनको, उन तक बात को पहुंचाना, फिर उन तक फैलाना, इसमें अपना माल लग रहा है माल भी लगाएं, जान लग रही है जान भी खपाएं। जान दे देना तो बड़ा आसान लफ्ज कहने को हो जाता है, असल जान देने का चूंकि मौका जो नहीं आता, इसलिए जो है ना जान देने के लिए तो सारे ही तैयार हुए हैं, सबने हाथों में जाने पकड़ी हुई है और कहते हैं भी जान देने को भी हम तैयार हैं, लेकिन असल बात यह है कि जब वक्त लगाने का मौका आए कि आपको अपना टाइम देना है, भाग दौड़ करनी है, उसमें क्या अपने आप को खपाते हैं, अपनी जिंदगी लगाते हैं, तो अपनी जानों के साथ भी और मालों के साथ भी अल्लाह के रास्ते में जो जिहाद करता है, उलाइका हुमुस सादिकून, वो सच्चे हैं, बाकी ईमान के दावे में सच्चे नहीं है लोग, चाहे कहते रहे हम बड़े मोमिन हैं, कुल अतुअल्लिमून अल्लाह भी दीनी को, क्या तुम ये कहते हो कि तुम अल्लाह को सिखा रहे हो अपना दीन, कि जी हम आ गए हैं आपके पास और हमने देखे जी हमने तो ईमान ले आए हैं और आपको तो हमारे साथ कोई जंग भी नहीं करनी पड़ी और हमें बुलाना भी नहीं पड़ा। तुम अल्लाह ताला को अपने दीन का बता रहे हो कि तुम्हारे अंदर कितना दीन ईमान है, तुम कितने बड़े मोमिन हो, वल्लाहु यालमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध, अल्लाह ताला से तो छुपी ही नहीं है कोई चीज जो आसमानों में और जमीन, वल्लाहु बिकुल्ली शयइन अलीम, अल्लाह ताला तो हर चीज को जानने वाला है, उससे क्या छुपा हुआ है, तुम उसको बताओगे। तो ये जो दावे हैं ना, ये दावे कर करके हमें दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं बहुत बड़ी मोमिना हूं, मैं बड़ी पाकीजा हूं, मैं बड़ी नेक हूं, मैं बड़ी दीनदार हूं, इन दावों से कुछ नहीं होगा। किस पे अपने दावे जिता रहे हो, और यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू, ये आप पे एहसान जिता रहे हैं कि हम इस्लाम ले आए, लेकिन इस्लाम लाना जो होता है ना हमारा, या दीन के किसी हुक्म पे चलना, उसकी पाबंदी करना, ये किसी पे एहसान नहीं होता। बाज दफा अल्लाह पे एहसान अस्तगफिरुल्लाह समझ के कर रहे होते हैं कि हमारा बड़ा एहसान है जी हम कुरान पढ़ रहे हैं, हमारा बड़ा एहसान है जी मैं तो इतनी थकी हुई थी फिर भी मैं नमाज के लिए उठ गई, तो किस पे एहसान जिता रहे हो, उसी के ऊपर तुम्हारा एहसान नहीं है, अपने आप पे एहसान कर रहे हो, अपने आप को आग से बचा के। कुल ला तमन्नू अलैया इस्लामकुम, कह दीजिए तुम एहसान ना करो मुझ पे अपने इस्लाम का, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके वो कह रहे हैं, कोई फेवर नहीं की तुमने इस्लाम ला के, या आज हम कोई दीन का थोड़ा बहुत कोई काम करने लग ही गए तो इसको बड़ा बना बना के बता रहे हैं, जैसे कि बड़ा बड़ा हमने इस्लाम के ऊपर, दीन के ऊपर हमने एहसान कर दिया, हम दीन की बड़ी खिदमत कर रहे हैं, क्या आपका एहसान है, ये तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, ये तो अल्लाह का एहसान है तुम पर कि उसने हिदायत दी तुमको ईमान के लिए, अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं ना तो हम कहें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी बिनियमतिही ततिम्मु सालिहात, अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने कि नेकियों की तौफीक दी और इसको मुकम्मल कराया हमारे से कि ये हम नेकी कर सके, एक बार ना हम अरे कोई इतनी ताकत है ना, कुव्वत है ना, तौफीक है हमें कि हम खुद कुछ कर सके। ये तो अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दे दी, और ये इतनी बड़ी नेमत ईमान की दी, इस्लाम की दी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम इसके ऊपर फख्र करें और उसके बाद फिर इसको दूसरों पे एहसान जिताएं कि देखो हम कितना दीन की खिदमतों में लगे हुए, हम तो इस्लाम ले आए, मैंने तो हिजाब शुरू कर दिया, मैंने तो ऐसे कर दिया, मैंने तो ये, तो किसके ऊपर एहसान है? अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, तुम्हें तौफीक देगी। और ये वाकई अल्लाह ताला का बड़ा एहसान होता है। अगर आज हम कुरान पढ़ रहे हैं ना, या सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको अल्लाह का एहसान माने कि या अल्लाह तूने मुझे तौफीक दे दी, वरना मैं भटक रही होती किसी जगह पे, वरना मैं पता नहीं कहाँ गुमराहियों में होती। कुन तुम सादिकीन, अगर हो तुम सच्चे तो ये तुम समझो कि ये अल्लाह ताला ने एहसान किया तुम्हारे ऊपर। तो वैसे भी एहसान जिताने वाला है, और माँ बाप का नाफरमान और आधी शराबी जो है जन्नत में नहीं दाखिल होंगे। तो मेरा और आपका कोई एहसान नहीं, हम बस अल्लाह ताला के आगे और झुक जाएं कि दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है ना, ये नेमत ईमान, नेमत इस्लाम है, ये सबसे बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें बिन मांगे ही दे दी। अभी हमें समझ भी नहीं थी तब से दे दी। तो कोई इस्लाम कबूल करता है उसका भी कोई एहसान नहीं, इस्लाम पे भी कोई एहसान नहीं कि मैं इतनी बड़ी शख्सियत इस्लाम ले आई। कोई हिदायत का रास्ता पा लेता है, नेकी का रास्ता पा लेता है, उसको तौफीक मिल जाती है, कोई पढ़ रहा है, कोई कोई नेकी कर रहा है, वो भी एहसान ना जिताए। ये अल्लाह ताला का एहसान अपने ऊपर समझे, वरना खप रहे होते कहीं जाके किसी मॉल में, या घर के कामों में, या किसी और चीज में। साहबा कराम इसको बड़ी नेमत समझते थे, बड़ी नेमत समझते थे। इसी वजह से तो वो कितने भी उनके ऊपर मुश्किल हालात आ गए, लेकिन वो इसी वजह से मुतमईन होते थे और अल्लाह के शुक्र गुजार होते थे, क्योंकि उनको नेमत ईमान का पता था। और अल्लाह ताला हर चीज को एहसान नहीं फरमाता, अल्लाह ताला ने नेमते हमें गिनवाई हैं कुरान पाक में, कई नेमते गिनवाई, लेकिन ईमान को फरमाया कि ये एहसान है अल्लाह ताला का कि उसने तुम्हें हिदायत दी ईमान की। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजना, ये एहसान फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एहसान है ये अल्लाह ताला का। इन्नल्लाह यालमु गैब अस्समावाति वल अर्द वल्लाहु बसीरु बिमा तअमलून। अल्लाह ताला गैब को जानता है, आसमानों के और जमीन के, और वो देखने वाला है जो तुम अमल करते हो। शुरू में आया कि वो सुनने वाला है, वो जानने वाला है, एंड में आया कि वो देखने वाला है जो तुम अमल करते हो। वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है, जानता भी है जो तुम अमाल कर रहे हो। वो गैब तक को जानने वाला है, दिलों के अंदर के जो राज होते हैं ना उनको भी जानता है। एक दिलों के अंदर की वैसे ही बातें होती हैं, एक दिल के भी राज होते हैं जो भी इंसान कभी किसी को नहीं बताता, वो दिलों के अंदर ही रहते हैं, वो इतने छुपे हुए होते हैं, अल्लाह ताला उनको भी जानता है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अल्लाह ताला हमें इन तमाम गुनाहों से बचा ले, और हम तौबा करें, और हम इसके बाद अजम करें ये कि हम कभी भी इन गुनाहों में, अल्लाह ताला हमें इनसे बचा के रखे, कभी भी ना हम मुलव्वस हों। तिलावत सुने।
يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون